హరే కృష్ణ శ్రీల ప్రభుపాదికి నిజై గోర్ ప్రేమానంద जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जना बलभ गिरीवर धारी जय गोपी जना बलभ गिरीवर धारी जय जसदानंदना ब्रज जनरंजन 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. పార్వతీపాదికి ఏం విష్ణుపాద పరమం సరి విరాజుకి సరి అష్టు దర్శతు మహర్షి భక్తి సిద్ధాంత సరిత ఠాకూర్ మహారాజ్కి నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్కి అనంతకోటి వైష్ణవ బృందకి శ్రీ రాధాగిరిధరి భగవానికి జయ జగన్నాథ్ బలదేవ సుభద్రాజీకి సమవేత భక్త బృందకి శ్రీల ప్రభుపాదికి మితగోర్ ప్రేమానంది ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయాల్ముదీరయే నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భాగవతీ ఉత్తమా శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టకీ. శ్రీమద్భాగవతం క్యాంటో 9 అధ్యాయ 13 శ్లోక 27 పఠించి. ఏతే మిథిల రాజన్ ఆత్మవిద్యా విశారదా యోగేశ్వర ప్రసాదేన ద్వంద్వముక్త గృహేసపి ఏతే మిథిలారాజ ఆత్మవిద్యా విశారద యోగేశ్వర ప్రసాదేన ద్వంద్వముక్త గృహేసపి ఏతే మిథిలారాజ ఆత్మవిద్యా విశారద యోగేశ్వర ప్రసాదేన ద్వంద్వముక్త గృహేసపి. श्लोकों का शब्द ऐसे हैं, मेरे पीछे आप लोग कृपा करके बोलिए, ऐसे ये सारे निसंदेह मैथिला मिथल के वंशज राजन हे राजा आत्मविद्या विशारदा आध्यात्मिक ज्ञान में पटु योगेश्वर प्रसादेन भगवान कृष्ण जो योगेश्वर है उनकी कृपा से द्वंद मुक्ता वो सबके सब भौतिक जगत के ये सबके सब भौतिक जगत के द्वैत भाव से मुक्त हो गए। गृहेषु अपि घर पर रहते हुए भी ट्रांसलेशन एंड पर्पट ही डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की ट्रांसलेशन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजा परीक्षित मिथिल वंश के सारे राजा अध्यात्म ज्ञान में पटु थे, अतएव घर 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 पर रहते हुए भी संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो गए। तात्पर्य ये भौतिक जगत द्वैत कहलाता है। चैतन्य चरितामृत में कथन है कि द्वैत भद्रा भद्र ज्ञान सब मन धर्म यही भालो यही मंद यही सब भ्रम। द्वैत के जगत में अर्थात भौतिक जगत में अच्छाई तथा बुराई दोनों एक सी है, अतएव इस संसार में अच्छा बुरा या सुख दुख में अंतर करना व्यर्थ है क्योंकि ये दोनों मन धर्म है। क्योंकि यहाँ पर हर वस्तु दुखदायी है, अतएव कृत्रिम परिस्थिति उत्पन्न करके उसे सुख से पूर्ण मानना कोरा भ्रम है। मुक्तमा प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर रहने के कारण हर परिस्थिति में ऐसे द्वंद्व से अप्रभावित रहा आता है। वो तथाकथित सुख दुख सहन करके कृष्ण भक्त बना रहता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। मात्र स्पर्श सुगंधे सीतोष्ण सुख दुख अगमा इन अनित्यतम तिथिख्य स भारत। हे कुंती पुत्र सुख तथा दुख का अस्थायी प्रकट होना और काल क्रम से उनका अंतर्ध्यान होना जाड़े तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरत पुत्र ये इंद्रिय विषय से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य के अविचलित भाव से इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जो मुक्त है भगवान की सेवा करने के कारण दिव्य पद पर होने से तथा कभी सुख दुख की परवाह नहीं करते। वो जानते हैं कि ये परिवर्तन ऋतुओं के समान है जो शरीर के स्पर्श द्वारा अनुभूति गम्य है। सुख तथा दुख आते जाते रहते हैं, अतः पंडित को उनकी परवाह नहीं रहती। कहा गया है गतासन अगतासन न अनुसंसति पंडिता। शरीर प्रारंभ से मृत रहता है क्योंकि यह पदार्थ का पिंड है, इसमें सुख दुख को अनुभूति नहीं होती क्योंकि शरीर के भीतर का आत्मा अध्यात्म बुद्धि में रहता है, इसीलिए उसे सुख दुख भोगना पड़ता है। किंतु यह तो आते और जाते रहते हैं। यहाँ यह ज्ञात होता है कि मिथिल वंश में उत्पन्न सारे राजा मुक्तात्म पुरुष थे जो इस जगत में तथा कभी सुख दुख से अप्रभावित थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के अंतर्गत महाराज निमी के वंशवली शीर्षक 13 अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आज के श्लोक पढ़ने के पहले कुछ श्लोक हम पीछे हैं तो खाली ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे, समय नहीं है। असामान्य विधि से उत्पन्न होने के कारण यह पुत्र जनक कहलाया और क्योंकि वो अपने पिता के मृत शरीर से उत्पन्न हुआ था अतएव वैदेह कहलाया। अपने पिता के शरीर के मंथन से उत्पन्न होने से वो मिथिल कहलाया और उसने राजा के रूप में जो नगर निर्मित किया वो मिथिला कहलाया। हे राजा परीक्षित मिथिल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो उदावसु कहलाया। उदावसु से नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से सुकेतु और सुकेतु से देवरात्र उत्पन्न हुआ। देवरथ से बृहदत्त नामक पुत्र हुआ और बृहदत्त का पुत्र महावीर हुआ जो सुधृति का पिता बना, सुधृति का पुत्र धृष्टकेतु कहलाया और धृष्टकेतु से हयस्व हुआ, हयस्व का पुत्र मरु हुआ, मरु का पुत्र प्रतिपक हुआ और प्रतिपक का पुत्र कृतस्थ हुआ, कृतस्थ से देवमीड से विस्तृत से महाधृति हुआ, महाधृति से कृतिरात नामक पुत्र हुआ, कृतिरात्र से महारोम हुआ, महारोम से सुवर्णरोम और सुवर्णरोम से हस्वरोमा उत्पन्न हुआ, हस्वरोमा से शिरोध्वज जिनका नाम जनक भी था नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब ओ खेत जोत रहा था तो उसके हाल के अग्रभाग से सीता देवी नामक कन्या प्रकट हुई जो बाद में भगवान रामचंद्र की पत्नी बनी, इस तरह वो शिरोध्वज कहलाया। शिरोध्वज का पुत्र ध्वज हुआ, कृतध्वज का पुत्र राजा धर्मध्वज हुआ, जिससे कृतध्वज तथा मित्रध्वज नामक दो पुत्र हुए। हे महाराज परीक्षित, कृतध्वज का पुत्र कुशी ध्वज हुआ और मित्रध्वज का पुत्र खांडिक्य हुआ था। कृतध्वज का पुत्र आध्यात्मिक ज्ञान में पटु था और मित्रध्वज के पुत्र वैदिक कर्मकांड में। केसी ध्वज के भय से भाग्य किसी केसी ध्वज का पुत्र भानुमान था और भानुमान का पुत्र सतधनु हुआ। सतधनु के पुत्र का नाम सुचि था, सुचि से सनद्वाज उत्पन्न हुआ और सनद्वाज पुत्र उजे केतु था, उजे केतु का पुत्र अज था और अज का पुत्र पुरजित हुआ, पुरजित का पुत्र अरिष्टनेमी हुआ, जिसका पुत्र श्रुतुआ श्रुतायु हुआ, श्रुतायु का पुत्र सुपार्श्वर्क था और उसका पुत्र चित्ररथ था, चित्ररथ का पुत्र खेमाधि था जो मिथिला का राजा बना, खेमाधि का पुत्र समरथ हुआ और उसका पुत्र सत्यरथ था, सत्यरथ का पुत्र उपगुरु हुआ और उपगुरु का पुत्र उपगुप्त हुआ जो अग्निदेव का अंश स्वरूप था, उपगुप्त का पुत्र बस्वनंत था जिसका पुत्र युद्ध हुआ, युद्ध का पुत्र सुभाषण, सुभाषण का पुत्र श्रुत, श्रुत का पुत्र जय जय और जय का पुत्र विजय था, विजय का पुत्र रुत था, रुत का पुत्र सुनक था, सुनक का बीतहव्य, बीतहव्य का ध्रुति, ध्रुति का बहुलस्य, बहुलस्य का कृति तथा उसका पुत्र महाबसी था। सुखदेव गोस्वामी बस आज फिर लास्ट है, पुत्र महाबसिता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन वैष्णवांश श्रीरूपां सग्रजातं सगना रघुनाथनितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगना ललिता श्रीशाखान्वितंश। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। दत्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो आज भागवत के प्रसंग में निमि महाराज का जो वंशावली आखिरी श्लोक है, ये आखिरी श्लोक में इस प्रकार महाराज के वंश परंपरा में आए हुए सारे राजा जो कि क्षत्रिय थे, सहज रूप में दिखा जाता है क्षत्रिय जो होता है वो रजोगुण के होते हैं, भोग करने की प्रवृत्ति उनके भीतर पाई जाती है, फिर भी लेकिन भगवान श्री राम उनके वंश में उत्पन्न होने के कारण तो भगवान श्री राम की कृपा से ये जितने सारे राजा वो वंश में हुए सारे आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े निपुण थे, भक्ति के मार्ग में बड़े ही प्रवीण थे, भक्ति मार्ग में बड़े ही शक्तिशाली थे। तो इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आज के श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्रील प्रभुपाद की। तो आज के श्लोकों में एक शब्द है आत्मविद्या विशारद, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान में पटु, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के जो ये श्लोक है इसमें ये जो शब्द का अर्थ है बहुत महत्वपूर्ण है, और खास करके हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद तो निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार की करने के लिए तैयारी करना चाहिए। मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद एक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करने के लिए वो तैयार होना चाहिए, कि आत्म साक्षात्कार के बिना एक प्रकार का मतलब ये जीवन पशु जैसे बन जाता है, अंधा जीवन है। आत्म साक्षात्कार ज्ञान को जब तक हम प्राप्त नहीं करते हैं तब तक हमें ये संसार में बारंबार जन्म मृत्यु चक्र में होंगे। तो इसीलिए भगवद गीता में भी बताया, ये बात को बताया जाता है 84 लाख जो जीवजोनी है वो 84 लाख जीवजोनी को चार भाग में बांटा गया है। ये 84 लाख जीवजोनी को चार भाग में बांटा गया है, ये है अंडज, पेंडज, स्वजज और उद्भिदज। कुछ जीव ऐसे अंडे से जन्म लेते हैं और कुछ पिंड शरीर से और कुछ चद मतलब पसीने से और उद्भिद। और ये जो 84 लाख विशेष 84 लाख जीव जोनी है उसको 84 लाख को चार भाग में बांटा गया है। और ये चार भाग में जितने सारे जीव है उसमें से मनुष्य जोनी जो है वो बहुत कम है, जल जाना वाला लक्षण आप जानते हैं। तो उसी में से ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य जो है 4,32,000, और 4,32,000 में से उनके भीतर से जो भक्त होते हैं वो रेयर होते हैं, बहुत क्वचित होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि बहुनाम जन्म नाम अंत्य ज्ञानवान मांग प्रपद्यन्ते। वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। अनेक अनेक जीवन बिताने के बाद ऐसे तो मिलते नहीं है, बहुत क्वचित है ऐसे भक्त मिलते नहीं है, लेकिन जो मिलता है वो दुर्लभ है। ऐसे मतलब सह महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे भक्त मिलते नहीं है लेकिन जो मिलता है वो दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब इतने आसान नहीं है। ऐसे एक वर्तमान समय में एक भगवान के अच्छे भक्त को प्राप्त मिलना वो इतना आसान नहीं है, ये बात को कहा जाता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज ये बताते हैं कि पर्याप्त बुद्धि वाले व्यक्ति को जीवन के प्रारंभिक अवस्था से मतलब बाल्यकाल से ही वो ये जीवन को भक्ति के अभ्यास के लिए ये जीवन को उपयोग करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ये बात बताते हैं कि पर्याप्त बुद्धि वाले व्यक्ति अपने जीवन के प्रारंभिक अवस्था से तो ये जीवन को भक्ति के कार्य के लिए उपयोग करना चाहिए। और ये जीवन जो है दुर्लभ है, ये मनुष्य शरीर जो है दुर्लभ है, और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी वो अर्थपूर्ण है। और ये मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जा सकती है, ये बात को प्रहलाद महाराज कहते हैं। और ये मनुष्य शरीर जो है एक सुअवसर प्रदान करती है भगवद्धाम प्रवेश करने का, और कोई शरीर में नहीं, हर शरीर में आप विषय भोग कर सकते हो लेकिन हर शरीर में भक्ति नहीं हो पाती है। हर शरीर में विषय भोग हो सकती है लेकिन मनुष्य शरीर में केवल भक्ति संपन्न हो सकती है, भक्ति हो सकती है। और ये बात भी हम जानते हैं, इस शरीर का जो आवश्यकता है चार चीजें, आहार निद्रा भय मथन। किंतु आध्यात्मिक मार्ग में उठने वाले व्यक्ति को ये सबको कम करना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग में, भक्ति मार्ग में यदि आगे होना चाहते हैं तो ये आवश्यकता को कम करना चाहिए। और ये बात भी शिव जी बताते हैं, खास करके ये जो शरीर है भक्ति के लिए बहुत बड़ा बंधन है। हाँ, अब शरीर को पार करके जो व्यक्ति भक्ति के स्तर में पहुंच गया, तो ऐसे व्यक्ति मेरे लिए नमस्य है। ये बात को शिव जी कहते हैं, पंच भगवती का ध्यान मध्य लोक निवासी न भगवत भक्ति रसिका नमस्य मादृशं सदा। भले ये पंचभूत पदार्थों के द्वारा ये शरीर हमारा है, इसके कारण भक्ति नहीं हो पाती है, पदार्थ मृत है, निष्क्रिय है, जो आत्मा है स्पिरिट है, चेतन वस्तु है। जब चेतन पदार्थ के सम्मिश्रण में आता है तो फिर भक्ति के लिए बहुत बड़ी रुकावट उत्पन्न करती है। तो इसीलिए सिद्धि कहते हैं कि पंचभूत को पार करके जो व्यक्ति मेरा भगवान का भक्ति प्राप्त कर लिया, तो वो ऐसे व्यक्ति मेरे लिए नमस्य है। और ये बात भी दिखा जाता है वैदिक साहित्य में। और सारे वेदों का अध्ययन करने का उद्देश्य है मनुष्य जीवन में भक्ति का पूर्ण अवस्था को प्राप्त करना। वैदिक सभ्यता में और सारे वेदोध्यान करने का उद्देश्य यह है मनुष्य जीवन में, खास करके मनुष्य को भक्ति का पूर्ण अवस्था को प्राप्त करना, ये बात। और इसीलिए वैदिक प्रणाली में जीवन प्रारंभिक अवस्था से ब्रह्मचर्य प्रणाली को चलाई जाती है। जीवन के शुरुआत के समय, जीवन के पहली अवस्था से ब्रह्मचर्य प्रणाली को चलाई जाती है, जो कि उसी अवस्था से वो अपने कार्यों को इस तरह मोड़े जो भक्ति में प्रवृत्त हो सके। बचपन के अवस्था में अपने कार्यों को इस ढंग से लें जो कि वो व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त हो सके। ये बात को भी प्रहलाद महाराज बताते हैं। और वैदिक साहित्यों का निर्णय को उल्लेख न करने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्य के प्रति आज इतना क्रूर बन चुका है। तो माताओं को शिक्षा दिया जाए, बच्चों को ब्रह्मचारी बनने के लिए शिक्षा न दे करके माताओं को शिक्षा दिया जाते कि जनसंख्या बढ़ने न देने के लिए गर्भ से बच्चा का हत्या किया जाए। वैदिक साहित्य का उल्लेख न करने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के प्रति, सदस्य के प्रति इतने क्रूर बन चुका है। तो माताओं को शिक्षा दिया जाती है कि बच्चों को गर्भ में कैसे हत्या किया जाए। और यदि वो बच्चा जन्म भी ले लेता है तो उनको इंद्रिय तृप्ति की शिक्षा दिया जाती है। और जब तक एक व्यक्ति कृष्ण को समझ नहीं लेता, कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त कर नहीं लेता, तब तक वो भवबंधन में पड़ा रहता है। और जब तक वो भगवान के चरण कमल को स्वीकार कर नहीं लेता, तब तक बद्ध जीवन का समाप्त नहीं होता। ये बद्ध जीवन समाप्त करने के लिए बद्ध जीव को अवश्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की शरण ग्रहण करनी ही चाहिए। और भगवान भी यही चाहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं। भगवान भी गीता में यही बताते हैं। कम से कम मनुष्य को तो इतना ही समझदार होना चाहिए कि वो समझे कि ये नश्वर भौतिक शरीर थोड़े समय के लिए, ये जो भौतिक शरीर मिला ये नश्वर है और थोड़े समय के लिए, और जब तक वो रहेगा तब तक हमें कष्ट देगा। जब तक ये भौतिक शरीर रहेगा तब तक एक जीव को कष्ट भोगना ही पड़ेगा। लेकिन साधु संगति से यदि कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर लें, उनका बद्ध जीवन का अंत हो सकती है। साधु ये बद्ध जीवन है, भौतिक शरीर है, कष्ट भोगना पड़ेगा, किंतु ये बद्ध जीवन के भीतर यदि साधु का संगति कर कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर लिया तो उनका बद्ध जीवन का अंत हो सकती है, ये भौतिक जीवन का परिसमाप्ति हो सकती है। क्षण दर्शन साधुसु, क्षण मात्र साधुओं के संगति करने से हमारा भौतिक जीवन का पुनः छेद वहीं पर हो जाती है। तो ये बात को भी मुकुंदमाला स्तोत्र में कुलशेखर अडवाल जी बताते हैं। और ये बात को भी प्रभुपाद जी और प्रहलाद महाराज भी ये बात को कह रहे हैं। साधु की संगति करने से उनका जो मूल भावना जो कृष्ण भावना अमृत कहलाती है, साधु की संगति करने से जीव के बद्ध जीव के भीतर जो सुप्त कृष्ण भावना अमृत जो सोया हुआ है सुप्त अवस्था में है जो है जिसको कृष्ण भावना अमृत कहा जाता है तो वो फिर जागृत हो सकती है। साधुओं के संगत से साधुओं के संग करने से जीव के भीतर जो कृष्ण भावना अमृत है तो वो पुनः जागृत हो सकती है। तो कहना के ये तात्पर्य यहाँ पर एक मनुष्य को समझना चाहिए कि ये जो भौतिक जीवन है वो दुखों से पूर्ण है, उसको केवल हमें शुद्ध बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं। अब जब तक हमारा बुद्धि शुद्ध नहीं होती है तब तक हमें समझ नहीं पाएंगे कि जो अवांछित भौतिक शरीर है वो दुखों से पूर्ण है, नश्वर है, तब तक हमें समझ नहीं पाएंगे। और इस जीवन में जिसका बुद्धि विकसित हुआ है, और ये बात की हमें देखते हैं, जब तक भगवान शरणारविंद का शरण ग्रहण कोई कर नहीं लेता तब तक वो कितना बड़ा विद्वान हो, राजनीतिज्ञ हो या वैज्ञानिक हो, धर्मवेत्ता हो, वो मोह में मोहग्रस्त रहता है। जब तक भगवान का चरण कमल का शरण ग्रहण कर नहीं लेता वो कितना बड़ा व्यक्ति हो वो मोहित रहेगा। और भले कोई व्यक्ति अपने को भव कलमश से मुक्त समझे, जब तक भगवान का चरण कमल शरण नहीं लेता तो उनका बुद्धि दूषित रहता है, उनका बुद्धि विशुद्ध नहीं होता है। और इसी जीवन में खास करके मनुष्य जीवन में बुद्धि विकसित रहती है। इसी जीवन में जिसमें बुद्धि विकसित रहती है मनुष्य को कृष्ण को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए, करते हुए अपने भावना को बदलना चाहिए जो कि वो भौतिक संसार से मुक्त हो जाए। जन्म कर्म च मे दिव्यम जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, जैसे कोई जीव मेरा जन्म और कर्म के विषय से संशय मुक्त हो जाता है, फिर यह भौतिक संसार को नहीं लौटता। ये बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता में बताते हैं। जैसे मेरे जन्म कर्म के विषय में से संशय मुक्त हो जाता, फिर से दोबारा उनको एक कलेवर छोड़ने के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद, फिर दोबारा ये भौतिक संसार को नहीं लौटता, नहीं आता। ये बात भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं। और ये बात भी यहाँ पर बताया जाता है आज के श्लोकों में, द्वंद मुक्त। और एक शब्द है भगवत प्रसादेन, भगवत प्रसादेन युगस्तर प्रसादेन द्वंद मुक्त गृहस्थ अपि। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक हमें द्वंद्व और मोह से मुक्त नहीं हो सकते हैं, ये बात को कहा जा रहा है। और ये बात जब भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत का युद्ध हो गया और द्वारका छोड़ करके हस्तिनापुर छोड़ करके द्वारका आ रहे थे और अपने आने के लिए तैयारी कर रहे थे, गंतुम कृतमती रथम ब्रह्मन रथम आस्थित, मतलब द्वारका जाने के लिए वो गंतुम जाने के लिए आप निर्णय ले रहे थे, वो ऐसे सोच रहे थे और इस प्रकार का निर्णय लेकर के वो रथ के ऊपर बैठे हुए थे। रथ में बैठे थे तो वो समय उपलेवे अभिधावंतिम उतरा भय बिहुलम, जब गंतुम कृतमति ब्रह्मन रथम आस्थित, उपलेभे अभिधावंतिम उतरा भय बिहुलम, उस समय उतरा वो देखें भगवान श्री कृष्ण देखें रथ के ऊपर बैठ करके उपलेभे देखें उतरा भय बिहुलम, उतरा भयभीत अवस्था में उनके तरफ दौड़ के आ रही है। जब भगवान श्री कृष्ण देखें उसी प्रकार और उतरा ने उनके पास पहुंची और तो भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना की, ಪಾಯಿ ಪಾಯಿ ಮಹಾಯೋಗಿ ದೇವದೇವ ಜಗತ್ಪತೆ ನಾನ್ಯಂಗ್ ಅಭಯಂ ಪರಸ್ಯ ಯತ್ರ ಮೃತ್ಯು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ಯೂಂಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಡ್ಸಾಲುವೆ ಹರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹರಕು ಇಡ್ಸಾ ಕರ್ತೇ ಕ್ಯೂಂಕಿ ದ್ವಂದಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ ಹೈ ಜಡ ಅವ್ರ ಚೇತನ್ ಕಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಹೈ ಜಡ ಚೇತನ್ ಕಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಹೋನೆ ಕೆ ಕಾರಣ ಯಹಾ ಪರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಡ್ಸಾಲು ಹೈ ತೆ ಐಸೆ ಇಡ್ಸಾಲು ಜಗತ್ ಮೇ ಮೇರೆ ರಕ್ಷಾ ಕೈಸೆ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಹೈ ಐಸೆ ಇಡ್ಸಾಮಯ ಜಗತ್ ಕೆ ಭೀತರ್ ಸೆ ಮೇ ಕೈಸೆ ಪಾರ್ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಹೂ ಯೇ ಬಾತ್ ಕೋ ಉತ್ತರಾನೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಚರಣ ಕಮಲ್ ಮೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ತಿ ಹೈ ಕಿ ಪಾಯಿ ಪಾಯಿ ಮುಜೆ ಬಚಾಯಿಯೇ ಮುಜೆ ಬಚಾಯಿಯೇ ಮಹಾಯೋಗಿ ದೇವದೇವ ಜಗತ್ಪತೆ ಹೇ ಪ್ರಭು ಆಪೇ ಜಗತ್ ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೋ ಆಪ್ ಹೀ ಏಕಮಾತ್ರ ಆಪ್ ಹೀ ಮುಜೆ ಬಚಾ ಸಕ್ತಿ ಹೋ ನ ಅನ್ಯಂ ಔರ್ ಕೋಯಿ ಅನ್ಯಂ ಅಭಯಂ ಔರ್ ಕೋಯಿ ಆಶ್ರಯ ಮೇ ನಹೀ ದೇಖ್ ಪಾತಿ ನ ಅನ್ಯಂ ಅಭಯಂ ಪಸ್ಯ ಯತ್ರ ಮೃತ್ಯು ಪರಸ್ಪರಂ ಮೃತ್ಯು ಕೆ ಜುಲಮ್ ಮೇ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಹರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಝುಕೆ ಹುಯೆ ಹೈ ಐಸೆ ಮೃತ್ಯು ಕೆ ರಾಜ್ ಮೇ ಮೇರಾ ರಕ್ಷಾ ಕೈಸೆ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಹೈ ಆಪ್ ಮುಜೆ ಬಚಾಯಿಯೇ ಹಾ ಯತ್ರ ಮೃತ್ಯು ಪರಸ್ಪರಂ ನ ಅನ್ಯಂ ಅಭಯಂ ಪಸ್ಯ ಔರ್ ಕೋಯಿ ಶರಣ ಮುಜೆ ದಿಕ್ತಿ ನಹೀ ಹೈ ಇಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಬ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ ರಹೀ ಥಿ ತೋ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇಖೆ ಅವಾನ್ ಅಪಾಂಡಮ ಇದಂ ಕರ್ತುಂ ದ್ರೋಣರ್ ಅಸ್ತ್ರ ಅಬುದ್ಧ್ಯತ್ ಹಾ ತೋ ಭಗವಾನ್ ಓ ಸಮಯ ಉತ್ತರ ಜೋ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ ರಹೀ ಥಿ ಕಾಮಂ ದೋಹತು ಮಾಂಗ್ ಪಾರ್ಥ ಮಾಮೇ ಗರ್ಭ ನಿಪಾತ್ಯತಂ ಉತ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ ರಹೀ ಥಿ ಕಿ ಹೇ ಪ್ರಭು ಮೇರಾ ಶರೀರ ನಷ್ಟ ಹೋ ಜಾಯ್ ಉಸ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಮೇರಾ ಪರ್ವಾ ನಹೀ ಹೈ ಕಿಂತು ಮೇರೆ ಶರೀರ ಕೆ ಭೀತರ್ ಜೋ ಈ ಕುರುವಂಶ ಕೆ ಶೇಷ ಸಂತಾನ ಹೈ ಆಪ್ ಉನ್ಕಾ ಖ್ಯಾಲ್ ರಖಿಯೇ ಕಾಮಂ ದಹತು ಮಾಂಗ್ ನಾಥ ಮಾಮ ಗರ್ಭ ನಿಪಾತ್ಯತಂ ಲೇಕಿನ್ ಮೇರೆ ಗರ್ಭಸ್ಥ ಶಿಶು ಜೋ ಹೈ ಈ ಕುರು ಪಾಂಡವ ಕಾ ಶೇಷ ಹೈ ತೋ ಉನ್ಕೋ ಆಪ್ ರಕ್ಷಾ ಕೀಜಿಯೇ ರಕ್ಷಾ ದೀಜಿಯೇ ಹಾ ತಬ್ ಸಮಜ್ ಗಯೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಮಜ್ ಗಯೆ ಕಿ ಉಪಧಾರ್ಯ ಬಚಸ್ತಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಭಗವಾನ್ ಉತ್ತರಾ ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋ ಸೋನ್ ಕರ್ಕೆ ವೋ ಸಮಜ್ ಗಯೆ ಹಾ ದ್ರೋಣರ ಅಪಾಂಡವಂ ಇದಂ ಕರ್ತುಂ ದ್ರೋಣರ ಅಸ್ತ್ರ ಅಬುದ್ಧ್ಯತ್ ये पांडव अपांडव करने के लिए पांडव वंश को अपांडव करने के लिए द्रोण का जो अस्त्र है द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थाम का जो अस्त्र है उनके तरफ आ रही थी परीक्षित महाराज को नष्ट करने के लिए जब समझ गए भगवान श्री कृष्ण तो अंतस्थ भगवान उत्तरा के घर में प्रवेश किए और वो शिशु को रक्षा किए तो भगवान का शरण लेने मात्र से भगवान के कृपा से हमें सारे दुखों से हमें बच सकते हैं यहाँ पर इस श्लोकों के द्वारा भी बताया जाता है और कभी कभी ये बात भी दिखा जाता है वैष्णव का जो भक्तों के कृपा से जो द्वंद्व मोह में मुक्त होते हैं कभी कभी ये बात भी दिखती है कि भक्तों लोग का कार्य को ठीक ठीक समझना बड़े मुश्किल होती है कभी कभी ये बात भी दिखती है कि भक्तों का कार्य को समझना ठीक ठीक में समझना कभी कभी हमें चकरा जाते हैं हमारा बुद्धि पकड़ नहीं पाती है हाँ तो जदयु शास्त्र में खास करके आध्यात्मिकवादियों को भक्तों को वर्जित किया एकांत स्थान में स्त्रियों के साथ रहने के लिए वर्जित किया गया है फिर यदि वर्जित किया गया फिर नारद मुनि जैसे महान भक्त प्रह्लाद महाराज के जो माँ थी उनको आश्रय दिए जो बड़े भक्ति और श्रद्धा के साथ उनका सेवा कर रही थी तो क्या यहाँ पर नारद मुनि वैदिक आदेश का उल्लंघन किए ना ऐसे आदेश संसारी प्राणियों के लिए हमारे जैसे लोगों के लिए लेकिन नारद मुनि संसार के परे थे और हमेशा वो दिव्य पद पर थे और बहुत बड़े संत थे जिस प्रकार हमें देखे हैं हरिदास ठाकुर बहुत घना अंधेरा के भीतर हरिदास ठाकुर के पास एक दूसरी सी स्वभाव के स्त्री आई थी उनको भक्ति से भजन से हटाने के लिए लेकिन हरिदास ठाकुर के कृपा से जो स्त्री थी वो बहुत बड़े वैष्णवी बन गई तो कहने के अर्थ यहाँ पर है ये है तो सामान्य जनों को महान भक्तों का अनुकरण नहीं करना चाहिए कड़ाई से विधि विधान का अवश्य पालन करना चाहिए खास करके इस प्रकार का द्वंद्वात्मक जगत से बचने के लिए सामान्य भक्तों को ऐसे ऐसे महान भक्तों का अनुकरण न करते हुए जो भक्ति के विधि है वैधि भक्ति का जो फॉर्मूला है जो नियम है उनको कड़ाई से पालन करना चाहिए ये बात को यहाँ पर भी बताया जाता है और यही बात होती है भागवत के दसम स्कंद में जब तक योगेश्वर प्रसाद यही कृपा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए थे ये गुंफा के पास, भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए थे मुचकुंद राजा के पास, और वो समय एक गुंफा के भीतर सोए थे। और ये मुचकुंद राजा जो थे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, और बड़े सत्यवादी थे, भगवान को प्राप्त करने के लिए अनेक जन्मों से तपस्या कर रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण उनको अपने कृपा प्रदान करने के लिए ये गुंफा के पास, जो गुंफा के भीतर वो सोए हुए थे, वहां पर पहुंचे थे। और ये इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे मुचकुंद राजा, इतने भक्ति मार्ग में बड़े शक्तिशाली पुरुष थे, वो स्व शरीर में भौतिक स्वर्ग में जाते थे। ऐसे स्व शरीर में, ऐसे ऐसे शरीर में हमें क्या, शरीर छोड़ने के बाद हमें स्वर्ग जाते हैं कि नरक जाते हैं, लेकिन पहले पहले समय में भक्त लोग इतने भक्ति में इतने मजबूत होते थे, वो स्व शरीर में स्वर्ग जाते थे और आते थे। जैसे हम चर्च गर जाते आते रहते हैं, पहले समय भक्त लोग स्वर्ग जाते थे आते थे, उनको जाना आने का रास्ता था, क्योंकि ये सब भक्ति के द्वारा वो संभव हो पा रहा था। तो भौतिक जगत से वो राजा को बुलाया जाता था, देवताओं को, देवता लोग बुलाते थे और वो जाते थे देवताओं को असुरों के उत्पात से बचाने के लिए। और ये मुचकुंद राजा एक बार देवताओं के बुलाने से गए थे स्वर्ग पर, और वहां पर जब असुर के विरोध में लड़ाई कर रहे थे, उनका युद्ध कला को देखकर देवताओं के जो सेनापति थे वो बड़े चकित रह गए, और बड़े उनको प्रशंसा। युद्ध हो जाने के बाद तो ये कार्तिकेय, युद्ध हो जाने के बाद देवताओं के सेनापति जो कार्तिकेय थे, तो वो मुचकुंद राजा को कुछ बर देने के लिए इच्छा किए। तो बर में मुचकुंद राजा प्रार्थना किए कि युद्ध करते करते मैं एकदम क्लांत हो चुका हूँ, आप मुझे ऐसा कृपा करिए कि मैं लंबा समय तक सो जाऊं। तो देवताओं के सेनापति उनको आशीर्वाद दिए, और वे आशीर्वाद लेकर के मुचकुंद राजा वहां पर एक पहाड़ के गुफे में जाते हैं, वहां पर लंबे समय तक सो जाते हैं। और जब वहां पर वो सोए हुए थे, ठीक उसी समय मथुरा के ऊपर आक्रमण हो रही थी दक्षिण दिशा से एक काल जीवन व्यक्ति के द्वारा। और वो समय काल ने जब आक्रमण कर रहा था, ठीक उसी समय मथुरा के ऊपर और एक राजा आक्रमण कर रहा था, वो थे जरासंध। तो ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण अपने को और ब्रजवासियों को बचाने के लिए असुरों के आक्रमण से वो ब्रज छोड़ दिए। असुरों के आक्रमण से ब्रजवासियों को मुक्त करने के लिए ब्रज छोड़ करके मथुरा आ गए, क्योंकि ब्रज एक गांव था और गांव के लोग बड़े सरल होते हैं। और जब बार बार ब्रज के ऊपर आक्रमण हो रहा था असुरों के द्वारा, और ब्रज के लोग सताए जा रहे थे असुरों के उत्पात के द्वारा, और गांव में क्या होता है, इतने अस्त्र शस्त्र का इतना बड़े मॉडर्न आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं होता था, शहर में जिस प्रकार का आधुनिक अस्त्र शस्त्र पाई जाती है, किंतु गांव में ऐसा नहीं होती है। तो वहां पर जब वो जब असुरों का आक्रमण हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा आए। अब मथुरा आने के बाद भी मथुरा के ऊपर नाना प्रकार असुरों का उत्पात होने लगा। जब इस प्रकार एक ये मुचकुंद राजा गुफा में सोए थे, ठीक उसी समय मथुरा के ऊपर एक राजा आक्रमण किया, उनका नाम था कालजवन। और ये कालजवन गर्भ मुनि के दृष्टि शक्ति से उत्पन्न हुआ था। एक बार गर्भ मुनि अपने साले के द्वारा अपमानित हो गए, उनके साला थोड़ा उनको क्रिटिसाइज कर दिया। जब जदुवंश के लोग सुने कि गर्भ मुनि का साला उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो थोड़ा हंस पड़े। और जब जदुवंश के लोग थोड़ा हंस पड़े, तो गर्ग मुनि को अच्छा नहीं लगा। तो वहां पर वो प्रमिज किए कि मैं ऐसे एक संतान को उत्पन्न करूंगा जो कि जदुवंश के लोगों को भीतत्रस्त करा। तो ऐसे वचन करके, ऐसे पण करके वो शिवजी के तपस्या किए, और शिवजी उनके तपस्या में संतुष्ट होते हैं और बार प्रदान करते हैं। और शिवजी के शक्ति से तो ये गर्ग मुनि एक मुस्लिम स्त्री के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, और मुस्लिम स्त्री के गर्भ से एक व्यक्ति जन्म लेता है, उनका नाम रहता है कालजवन। और ये कालजवन जब मथुरा की दक्षिण दिशा में राज कर रहा था, ठीक उसी समय नारद मुनि के कहने से उनको पता चलता है कि वर्तमान सारा संसार के भीतर जदुवंश के राजा शक्तिशाली है, और ये कालजवन जदुवंश के मथुरा के ऊपर आक्रमण करता है। और जैसे आक्रमण करता है, तब भगवान श्री कृष्ण उनके साथ युद्ध नहीं करते, सीधा आगे आगे बढ़ते हैं। और आगे आगे जाते जाते हाँ वो गुफा के पास पहुंचते हैं। और जब कालेजबन पीछा पीछा कर रहा है और भगवान श्री कृष्ण आगे जा रहा है, आगे जा रहे हैं और कालेजबन पीछा कर रहे हैं हाँ, और कालेजबन दौड़ रहा है और भगवान श्री कृष्ण बड़े धीर गति से चल रहे हैं हाँ। भले कालेजबन दौड़ रहा था लेकिन भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे जा रहे, लेकिन जब तक हमारे भीतर से हमारा मन और हृदय से पाप संपूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाता तब तक हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। अरे कालेजबन सहज एक पापी व्यक्ति था तो इसीलिए वो भगवान दौड़ते हुए भी भगवान श्री कृष्ण को पकड़ नहीं पा रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण उनको कोई गुफा के पास ले गए जो गुफा में मुचकुंद राजा सोए थे, और वहां पर लेकर के भगवान श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रवेश किए हाँ। जब प्रवेश कर गए तो कालेजबन गुफा के बाहर रह करके बहुत गाली गुलज किया, गाली गुलज करके फिर वो भी एक गुफा के भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके देखा कि भगवान श्री कृष्ण नहीं है। वो समय थोड़े समय के लिए भगवान श्री कृष्ण छुप गए थे। आज जब भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा तो अचानक उनका नजर गया नीचे कोई एक व्यक्ति सोया हुआ है, तो सोचा ये डर के मारे वहां पर गुफा के भीतर आके सो गया है। तो कालेजबन क्या किया, थोड़ा कुछ घोड़ के सोए थे तो कालेजबन सोचा ये मुझे डर के ऐसे सो गया है, तो एक बहुत जोर से लात लगाया सोया हुआ व्यक्ति को। कालेजबन बहुत बड़ा लात लगाया, और जैसे लात लगाया तुरंत वो सोया हुआ व्यक्ति उठा और उठ करके चारों तरफ देखने लगा, और जैसे चारों तरफ देखने लगा उनके सामने वो देखा कालेजबन खड़ा है। तुरंत उनके वो सोया हुआ व्यक्ति के आंखों से एक अग्नि निर्गत होती है और अग्नि वो सामने जो कालेजबन खड़ा था उनको जला देती है। जब कालेजबन जल करके भस्म हो जाती है तब जाके भगवान श्री कृष्ण कालेजबन ना वो मुचकुंद राजा के सामने आते हैं। जब कालेजबन भस्म हो जाती है तब जाके भगवान श्री कृष्ण मुचकुंद राजा के सामने आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जाते होते तो कालेजबन को वहीं पर मार देते, लेकिन वहां तक लेके आने का मतलब ये है तो वो अपने भक्तों को कृपा करने के लिए पहुंचे थे, गुफा के पास पहुंचे थे और उनको कृपा करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि मेरे कृपा के द्वारा इस संसार की माया आपको छू नहीं सकता। भगवान उनको मुचकुंद राजा को वचन देते हैं कि मेरे कृपा के द्वारा आपको इस संसार की माया छू नहीं सकता। और भगवान का कृपा प्राप्त करने के बाद तो मुचकुंद राजा गुफा से निकलते हैं, और निकल करके जब देखते हैं कि सारा ये संसार के लोग बड़े छोटे हो गए हैं और पेड़ पौधे सब छोटे हो गए हैं, तो समझ गए संसार में कली प्रवेश किया है और ये संसार की तरफ न देख करके सीधा हाँ तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर चल जाते हैं। तो कहने के अर्थ ये है जब तक भगवान की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती है तब तक द्वंद्व मोह से हमें मुक्त नहीं हो सकते। गृहग्रस्थी जीवन इतने बंधन की कारण है, काम कर्मजम काम अविद्या काम कर्मजम, इसीलिए विमुच्यतम ऐसे गृहग्रस्थी जीवन जहां पर काम को भड़काती है, जहां पर काम को उत्पन्न करती है, ऐसे जगह को विमुच्य तुरंत छोड़ देना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। ऐसे के अविद्या जगह है, अज्ञान की जगह सहज व्यक्ति के भीतर मोह उत्पन्न करती है गृहग्रस्थी जीवन। यहाँ पर कहा जाती है जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक गृह के परिधि के परिधि से हमें अपने को मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि सहज काम कर्मजम काम को उत्पन्न करने वाली जगह है गृहग्रस्थी की सीमा। गृहग्रस्थी की जो स्थान है सहज लोगों के भीतर काम को उत्पन्न करती है हाँ। सहज लोग आसक्त होते हैं, और जब हमें कोई वस्तु के प्रति आसक्त होते हैं नेक्स्ट स्टेप दुख है। एक तो व्यक्ति जब वस्तु के प्रति आसक्त होता है तो ऐसे प्राप्त करने के लिए इच्छा करता है, और जब उसको वो वस्तु मिल जाता है वो वस्तु के प्रति वो आसक्त हो जाता है, और आसक्ति का नेक्स्ट स्टेप दुख है। तो ऐसे गृहग्रस्थी जो है वो दुखों की जड़ है, इसीलिए विमुच्यतम ये बात को कहते हैं अजामिल हाँ। तो कहते हैं ऐसे गृहग्रस्थी जो काम को और अज्ञान को और मोह को उत्पन्न करने वाली जगह है ऐसे मैं उसको त्याग दूंगा। किसके लिए, न क्षण संगेन साधुसु, साधुओं का संगति के लिए भगवत चरण को प्राप्त करने के लिए ऐसे गृहस्थ जीवन से मैं रिटायर लूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। इस प्रकार हाँ अजामिल भी उनके जीवन इतिहास से हमें देखते हैं। तो कहने का अर्थ आज के श्लोकों में देखेंगे कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है हमें आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण बन नहीं सकते, और ये संसार की माया से हमें अपने को छुड़ा नहीं सकते। ये ज्ञान को प्राप्त करते हुए यदि हमें भगवान चरण कमल को प्राप्त ध्यान लगाएंगे तो श्रीमद् भागवतम के कहने के अनुसार इस संसार के माया से हमें मुक्त हो सकेंगे। हरे कृष्ण। क्योंकि श्लोकों को बहुत कम समय था तो मैं अच्छे तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाया, तो जो भी कम समय के भीतर प्रस्तुत किया आप लोगों को बताया तो आप लोग यहाँ से समझे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।